देवियों सज्जनों, इस हफ्ते हम दो दो बड़े त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगस्त 15 भारत के इंडिपेंडेंस डे, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन अपने देश की स्वतंत्रता के अवसर पर। अगले रविवार को हम अपने आर्य समाज में इसकी सेलिब्रेट करेंगे। इस हफ्ते और कल 14 तारीख को और एक बहुत बड़ा दिन है, जन्माष्टमी के रूप में हम श्री कृष्ण के 5244वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जो कि 14 अगस्त को पड़ता है। देवियों सज्जनों, संसार में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार अपने समाज के बारे में सोचते हैं, जीते हैं। पर जो लोग को दूसरों के लिए जीते हैं, जो ज्ञान से भी कम हो सकते हैं, धन से भी कम हो सकते हैं, पावर से भी कम हो सकते हैं, पर जिनका जीवन समग्रता के लिए होता है, समाज के लिए होता है, विश्व के लिए होता है, वो फिर महान बन जाते हैं। और जो महापुरुष होते हैं, वो उनका जीवन अपने आप में ही एक शास्त्र होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा, महाजनो ये न गतस्य पंथा। जैसे आप अलग अलग शास्त्रों में जब आप पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो आपको थ्योरी पढ़ना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकल करने के लिए आप लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। जीवन के लिए भी इसी तरह का होता है। एक तो जीवन को कैसे जिया जाए, अच्छे में बुरे में अलग अलग परिस्थितियों में, उसके लिए समझने के लिए हमारे पास हमारे शास्त्र होते हैं, धर्मशास्त्र होते हैं। पर कभी कभी धर्मशास्त्र समझ में नहीं आता है, समझ में आता है तो दिल भी नहीं मानता कि ऐसा मैं क्यों करूं, कैसे करूं, मैं एक इंसान हूं, मेरे से कैसे होगा। तो उसका जो लैबोरेटरी है, वो महाजनों का जीवन होता है। जो बड़े लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनका जो जीवन चरित्र है, वो उन शास्त्रों का रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब होता है। इसी तरह अगर आप श्री कृष्ण को समझना है, आप गीता पढ़ते हैं, भारतवर्ष में हर आधुनिक हिंदू गीता को बहुत आदर भाव के साथ पढ़ता है, समझता है, और विश्व में बहुत इसकी प्रचार प्रसार भी है। अगर आप गीता को ठीक से समझते हो तो कृष्ण का जीवन आप समझ जाते हो। अगर आप कभी गीता पढ़ नहीं पाते हो तो आप कृष्ण का चरित्र पढ़ो महाभारत में, तो फिर आपको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके जीवन गीता को रिफ्लेक्ट करता है। गीता में जो कुछ है वो कृष्ण का चरित्र का रिफ्लेक्शन है, और कृष्ण के चरित्र में जो कुछ है वो गीता के थ्योरी का रिफ्लेक्शन है। तो जो कहा वो किया, जैसे कहा वैसा किया। जीवन में और कृष्ण वर्षा ऋतु में इस भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में पैदा हुए थे। रात को 3112 BCE में, और एक व्यक्ति ऐसा जिसका जीवन जो पैदा होता है जेल में, प्रिजन में, और मरता है जंगल में किसी अकेले जगह पर जहां कोई भी नहीं होता है, थका हारा होकर के, और उस जेल से लेकर के जंगल के अकेलेपन की जिंदगी के बीच में जो जीवन उन्होंने जिया, जब बचपन से लेकर के मृत्यु तक, हर पल उसमें मैं कहीं नहीं था, मेरा कहीं नहीं था, मेरे लिए कहीं नहीं था। हजारों राजाओं को, राक्षसों को, दुष्टों को उन्होंने मारा, हराया, पर खुद नहीं कहीं राजा बने, जो जिसका हक था, जिसका राइट था, उसको राजा बने और आगे चले। जहां जहां अन्याय देखा खड़े हुए, इसीलिए नहीं कि उनके साथ अन्याय हो रहा था, अन्याय किसी के भी साथ हो रहा था, खड़े हुए, लड़ाई में भाग लिया, बदनामी भी सही, उसके बावजूद भी वो खड़े रहे। उन्होंने आखिर में अपना एक राज्य भी बनाया अलग से, द्वारिका, जो समुद्र के बीच का एक छोटा सा आइलैंड है, जिसको उन्होंने अपना राज्य बनाया, पर खुद राजा नहीं बने, वहां गणराज्य की स्थापना की। गणराज्य एक टाइप का डेमोक्रेसी तो नहीं है, वहां कोई लोकतंत्र या लोक वोट नहीं देते हैं, पर एक राजा शासन नहीं करता है, बहुत सारे समझदार ज्ञानी लोग मिलजुल के, जैसे आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसको गणराज्य कहते हैं, जिसमें कृष्ण एक थे। खुद राजा कहीं नहीं बने, इतने संघर्षों में, लड़ाइयों में जीवन को समर्पित करने के बावजूद भी खुद कहीं नहीं थे। और जो उन्होंने गीता में कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म कर सकते हो, फलों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और फल के साथ चिपकने की कोशिश मत करो। वो जो एक्शन विथ डिटैच्ड माइंडसेट, जो पूरे गीता का एक महत्वपूर्ण विषय है, वो कृष्ण के जीवन में आपको वो देखने को मिलता है। देवियों सज्जनों, महाभारत में व्यास अलग अलग जगह पर अनेक बार कृष्ण को योगी, योगेश्वर के रूप में एड्रेस करते हैं। बिल्कुल अपोजिट परसेप्शन जो उनके भक्तों ने बनाया है कृष्ण के बारे में, सो कॉल्ड भक्तों ने, माखन चोर, गोपी रमण, पता नहीं रमण का अर्थ पता है कि नहीं, डिक्शनरी में ढूंढिएगा गूगल में, राधा रमण, जो भी आपको भक्त लोग कृष्ण के बारे में बताते हैं, ठीक इसका अपोजिट महाभारत में महर्षि व्यास पूरे महाभारत में बार बार कृष्ण को योगी, योगेश्वर, ब्रह्मचारी के रूप में संबोधित करते हैं। योगी इसीलिए नहीं कि वो कहीं जंगल में मेडिटेशन करते थे या सिखाते थे, इसलिए कि उनका जीवन का हर पल, चरित्र का हर अंग उस योगी के तरह था। इसलिए गीता में भी आप आखिर श्लोक में पढ़ते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण खड़ा हो, जहां पर धनुर्धारी अर्जुन हो, वहां जीतना स्वाभाविक है। आपको छोटे से एक आधा उदाहरण देते हैं। महाभारत की लड़ाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, दुर्योधन भी मरा जा चुका है, और कृष्ण और पांडव गांधारी के पास आते हैं कौंसुल करने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए। गांधारी गुस्से में बहुत परेशान है, वो जानती है न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पर जिसने अपने 100 बच्चों को खोया है, वो हमारा दिमाग और दिल, जब दोनों को हम टटोलते हैं तो हमारा दिल ज्यादातर समय इमोशन है, भारी होता है। हमारे आपके जीवन में भी यही स्थिति होती है, हम जानते हैं कि ये गलत है या सही है, पर इमोशन तो इमोशन है। जिस मां ने अपने 100 बच्चों को खोया इन 5 पांडव और इस कृष्ण के कारण, उसके मन में कहां से उनके प्रति कोई अच्छा भाव होगा। तो गांधारी ने गुस्से में कृष्ण को शाप दिया कि तुमने ये सारा षड्यंत्र करके मेरे बच्चों को मरवाया, तुम्हें शाप देता हूं, जैसे मेरी बुढ़ापा में मेरे लिए कोई भी नहीं बचा था, सब बच्चे मारे गए, तुम्हारे खानदान भी वैसे ही नष्ट होगा। तुम जब मरोगे तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा। कोई हमें और आपको ऐसा शाप दे तो हमारी क्या मनोदशा रहेगी? पर कृष्ण बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े स्माइलिंग फेस के साथ बोलते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा मां। और सच यही होता है, यदुवंश में हर कोई एक दूसरे से लड़ता है, बर्बाद हो जाते हैं, पूरा यदुवंश नष्ट हो जाता है। कृष्ण के सामने पूरा यदुवंश अहंकार में डूबा हुआ था, क्योंकि उस यदुवंश में इतने बड़े बड़े योद्धा कृष्ण, बलराम, सात्यकी, प्रद्युम्न के तरह इतने सारे बड़े बड़े योद्धा, विश्व विजयी, विश्व गुरु थे। तो समाज में गर्व आना, अहंकार आना स्वाभाविक था। स्वाभाविकता आई, समाज में उत्पात मचाने लगे और एक दूसरे से मार काट करके मर गए। बुढ़ापा में थका हारा कृष्ण किसी जंगल में पड़ के मरते हैं। पर गांधारी के शाप के समय कृष्ण की मनोदशा, उसका मुख दशा में कोई विकृति नहीं थी। वही हंस हंस मुख जिसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। कृष्ण के कोई भी आप आधुनिक चित्र आप देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, एक हंसता हुआ चेहरा है, साथ में मुरली पकड़ा हुआ है। इतना बड़ा ज्ञानी, योगी, योद्धा, उसके बावजूद भी उसका जो पहचान है वो बड़ा मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाता हुआ एक व्यक्ति है। ये उस व्यक्ति, उस चरित्र का पहचान है। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षताम, कि सारी दुनिया को मैं मित्र के भाव से देखूं, सारी दुनिया मुझे मित्र भाव से देखे। सारी दुनिया को हम मित्र भाव से देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि हर कोई हमें फ्रेंडली देखे, पर अगर मेरे अंदर वो योगित्व जगा हुआ है तो फिर किसी भी परिस्थिति में मैं संसार को मित्र भाव से देखता हूं। वो जो माधुरिमा है, वो जो माधुर्य है कृष्ण के जीवन में, ऐसा नहीं कि उनके इस मिठास चेहरे के पीछे कोई, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। हमारे से हजार गुना कष्ट सहे, जेल में पैदा हुआ व्यक्ति से लेकर जिंदगी के हर पल जो संघर्ष में बिताता है, ह्यूमिलिएशन के साथ बिताता है, दुष्टों से अच्छे लोगों को बचाने के संघर्ष के साथ बिताता है, हर तरह के अपमानों को सहता है, उसके बावजूद भी उसके चेहरे में वो मिठास झलकता रहता है। ऐसा नहीं कि उनका जीवन बड़ा स्मूथ था, हमारे आपके तरह कोई ज्यादा, हम तो छोटी छोटी चीजों में इतना विचलित हो जाते हैं। इसलिए योगी था। किसी कवि ने कृष्ण के ये जो मधुर चेहरे को वर्णन करने के लिए संस्कृत में बड़ा सुंदर स्तोत्र लिखा है, एक दो पंक्ति आपके सामने रखता हूं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जिसका वाणी भी मीठी है, जिसका व्यवहार भी मीठा है, जिसका मुंह में भी मिठास है, चलने में भी मिठास है, बोलने में भी मिठास है, युद्ध के स्ट्रेटेजी बनाते समय में भी उस मिठास को वो कभी छोड़ते नहीं है, शत्रु के साथ बात करते समय भी उस मिठास को कभी छोड़ते नहीं है, जब पांडव को 13 साल का वनवास हुआ, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञात वनवास, अज्ञात वनवास मतलब जहां वो इनविजिबल रहे, कोई उनको देख ना सके। 13 साल के बाद जब वापस आते हैं तो कृष्ण मना कर देता है कि मैं आपको किसी भी तरह के राज्य वापस नहीं करूंगा, लड़ाई करके लेना है तो ले सकते हैं। बहुत सारी चेष्टा होती है कि किसी तरह के लड़ाई ना हो। आखिर में कृष्ण स्वयं मैसेंजर बनके, दूत बनके जाते हैं। कृष्ण जो उस समय में भी अपने कंटेम्प्रेरी समय में भी सबसे ज्यादा पूजनीय माने जाते थे, भीष्म द्रोण से लेकर के उस समय भी जितने भी बड़े बड़े योद्धा, ज्ञानी, गुरु, योगी, सब कृष्ण, व्यास, सब कृष्ण को अपने पूजनीय मानते थे, रेस्पेक्ट करते थे। उसके बावजूद भी वो सिर्फ पांडवों के दूत बनने को तैयार थे कि लड़ाई ना हो, दुर्योधन को समझा सके। दुर्योधन के पास पहुंचते हैं कि भाई देखो, ये लड़ाई झगड़ा करना बंद करो और जैसे तैसे निपटारा करो। कृष्ण, दुर्योधन को पता है कि कृष्ण बड़े राजनीतिक कूटनीति में बड़े निपुण है, अगर हम कृष्ण को किसी तरह समझा पाए तो हमारा कल्याण होगा। तो कृष्ण को पूछते हैं कि आइए हमारे घर में पहले भोजन करिए। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भाई देखो, खाना दो परिस्थिति में खाया जाता है दूसरों के घर में। जब आदमी को भूख लगे, खाना ना मिलता हो, या जहां प्यार हो। तुम मुझसे प्यार करते नहीं हो और मैं भूखा भी नहीं हूं, तो तुम्हारे घर में मैं कैसे खाऊं। शत्रु को भी उन्होंने किसी कटु भाषा में नहीं बोला, जो बोलना था बोलते थे, पर उनके चरित्र में, अंदर और बाहर के चरित्र में जो मिठास था, उस शत्रुपन में भी वो मिठास झलकता था। देवियों, सज्जनों, दुष्टों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, धर्म और अधर्म का क्या डेफिनेशन है, हिंसा और अहिंसा में कितना फर्क है, ऐसे बहुत सारी चीजों के विषय में बड़े सारे अलग अलग परसेप्शंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं। कृष्ण अर्जुन को भी इसी तरह एक डिलेमा से गुजरना पड़ा। अर्जुन और कर्ण की लड़ाई चल रही है, सब जानते हैं कि कर्ण ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, और कर्ण और अर्जुन के भयानक युद्ध में अचानक कर्ण का रथ की पहिया टूट जाती है और उसका जो रथ है वो जमीन के नीचे धंस जाता है, तो कर्ण नीचे गिर जाता है। युद्ध में उस समय नियम होता था बराबर से लड़ाई करने की, बराबर वाले से, जो तलवार पकड़ा है तलवार, जो रथ पर बैठा है रथ पर बैठने वाले को। तो कर्ण नीचे गिर चुका है तो अर्जुन को नहीं लड़ना चाहिए, अर्जुन भी नहीं लड़ रहा है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, देखो यही मौका है, कर्ण को मारो, फिर कभी नहीं मार सकते हो। कर्ण ने यह सुना, बोला कृष्ण कितने कपटी हो, कुटिल हो, अर्जुन को भड़का रहे हो अधर्म करने के लिए, ये पाप है, ये अधर्म है, मेरा रथ का टूटा हुआ है, मुझे समय चाहिए रथ को उठाने के लिए, और उस समय तुम अर्जुन को भड़का रहे हो मारने के लिए, ये अधर्म है, ये मत करने दो। कृष्ण तब कर्ण को समझाते हैं, ये बड़ा सुंदर 8-10 श्लोक है, हर किसी पॉलिटिशियन को जो आज के तारीख में राजा हैं, जो शासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, रूलर हैं, इनको ये समझना चाहिए इस डिलेमा को हैंडल करने के लिए। कृष्ण कहते हैं कर्ण हर पापी हर अधर्मी जब दूसरों को मारता है, दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है, तब उसको कोई धर्म या पाप नहीं दिखाई देता, पर जब खुद के ऊपर बीतता है तो वो धर्म की, पाप की, अधर्म की, पुण्य की सहारा लेकर बचने की कोशिश करता है। तुम खुद बताओ, यदा सभायाम राजानम अनभिज्ञम युधिष्ठिरम अजयिषित शकुनीर ज्ञानात क्वते धर्मस्तदागता, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था कर्ण, जब जुआ खेल में अनाड़ी युधिष्ठिर को तुमने छल से तुम लोग मिलकर के हरा रहे थे और उसके राज्य और पत्नी को भी छीन रहे थे। कर्ण तब तुम्हारा धर्म कहां था जब तुम कुरु सभा में तुम्हारे अपने भाइयों की पत्नी को भाभी की तुम इतनी नीच लेवल पर उनका मजाक उड़ा रहे थे। तब कर्ण तुम्हारा धर्म कहां था जब तुम सब मिलकर के पांडवों को जुआ घर लाख के घर में रख करके आग लगाकर मारने की कोशिश कर रहे थे। कर्ण तब तुम्हारा धर्म कहां था जब तुम बार बार कौरवों से मिलकर भीम को जहर पिला रहे थे। वो तो पुरानी बातें हैं, अभी युद्ध के मैदान में तब तुम्हारा धर्म कहां था जब 15-16 साल के एक लड़के को, अभिमन्यु को, एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा लड़ता है, तुम सात सात योद्धा मिलके एक निशस्त्र जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, सात सात योद्धा मिलके मार रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहां था। कृष्ण कहते हैं अर्जुन पापी हमेशा अपने को बचाने के लिए धर्म का ही सहारा लेता है, अधर्मी हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए धर्म का ही सहारा लेता है। तुम इसकी बात मत सुनो, इसको नहीं मारोगे अधर्म और फैलेगा और इसको मारने के लिए तुम्हारे पास कोई और अवसर नहीं होगा। देवियों सज्जनों, हो सकता है आपको उसमें कोई दूसरी बात दिखे, ये यकीन मानिए मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक विश्व में जिस तरह के करोड़ों लोग आजकल मर रहे हैं, वो टेररिज्म के कारण हो, नक्सल के कारण हो, या किसी भी कारण से हो, वो सब टेररिस्टों के कारण कम, हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिकली राइट होने वाले पॉलिटिकल लीडरों के माइंडसेट के कारण ज्यादा है। जो इनको, जिनको ये समझ में नहीं आता कि कोई टेररिस्ट के साथ आप ह्यूमन राइट का व्यवहार नहीं कर सकते हो, जब आप एक टेररिस्ट को बचाते हो, जब आप एक क्रिमिनल को बचाते हो, जब आप एक वायलेंट पर्सन को बचाते हो, जब एक किसी हत्या करने वाले आदमी को आप प्रोटेक्ट करते हो किसी भी नाम से, धर्म के नाम से, सेक्युलरिज्म के नाम से, ह्यूमन राइट के नाम से, जब भी आप बचाते हो, समाज में ज्यादा लोग मारे जाते हैं। बहुत लोगों को बचाने के लिए एक को मारना पड़ता है। तो कृष्ण उन आधुनिक नेताओं के लिए मार्गदर्शन करते हैं कि आप के ऊपर जब जिम्मेदारी है राज्य को बचाना, पब्लिक की सुरक्षा करना, आप उस समय सन्यासी की तरह बिहेव नहीं कर सकते हो। आपको अधर्मियों को, पापियों को सजा देनी पड़ेगी। देवियों सज्जनों, कृष्ण के जीवन का सबको पता है, पर कभी कभी हम हर साल उन्हीं गुणों को चर्चा करते हैं, हमारे अंदर भी कुछ रिवाइज हो जाता है। महाभारत में दो ऐसी इंसिडेंट हमें मिलता है मित्रता का, फ्रेंडशिप का। एक द्रोण और द्रुपद। प्राचीन काल में गुरुकुल में जब लोग पढ़ने जाते थे तो गरीब हो धनी हो, राजा का पुत्र हो गरीब का पुत्र हो, एक साथ गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल मतलब समझ लीजिए कि रेजिडेंशियल स्कूल्स, गांव से शहर से दूर जंगल में साथ रहकर पढ़ते थे, खाते थे, खेलते थे। जब बड़े हो जाते थे तो अपने अपने राजकुमार राजा बनते थे, तो ब्राह्मण ज्ञानी बनते थे, सब अपने अपने काम में जाते थे। और उस गुरुकुल की पढ़ाई में द्रुपद और द्रोण की दोस्ती हुई, मित्रता, बहुत प्रगाढ़ मित्रता हुई। तो दोनों पढ़ाई पूरी हुई, दोनों अपने अपने रास्ते में गए। द्रुपद पांचाल के राजा बने, राजकुमार थे। द्रोण गरीब ब्राह्मण के संतान थे, ज्ञानी तो वो बहुत थे, और हर विषय में वेदादि शास्त्रों से लेकर युद्ध विद्या में हर मामले में बड़े ज्ञानी थे, पर बहुत गरीब थे। उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम था नहीं। उनका बच्चा था, छोटा बच्चा पैदा हुआ था, दूध पिलाने के लिए भी गाय, दूध भी नहीं था ना, उन दिनों एक गाय रखते हैं, गाय भी नहीं थी। उनकी पत्नी कृपी ने उनसे बोला, आपका मित्र द्रोण है उसके पास जाओ, कुछ मांग करके लाओ, इतना बड़ा धनी है, राजा है, कुछ तो करो, घर में बैठने से कैसे चलेगा। द्रोण ने बोला, नहीं देखो, अरे स्कूल में दोस्त होना अलग बात है, आदमी बड़े होने के बाद कौन किसको पहचानता है, वो राजा है, मैं छोटा सा गरीब ब्राह्मण हूं, मेरा मन नहीं करता। पत्नी गरीबी के मारे मारी हुई, बच्चे के भूख सहने लायक नहीं, तो बहुत ज्यादा फोर्स की तो द्रोण को जाना पड़ा। द्रुपद के राजसभा में पहुंचकर द्वारपाल को, गेटकीपर को बोला, द्रुपद को बताओ कि तुम्हारा परम मित्र, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है द्रोण आया है तुमसे मिलने के लिए। गेटकीपर द्वारपाल ने देखा, फटा पुराना कपड़ा पहन रखा है, बाल गंदे पड़े हैं, शरीर गंदा है, गरीब सा दिखता है। पर जब द्रोण ने बार बार समझाया तो द्रुपद के पास द्वारपाल ने मैसेज पहुंचाया कि कोई गरीब ब्राह्मण मैले कुचले कपड़े पहनकर खड़ा है, बोलता है मैं द्रोण हूं और आपका परम मित्र है, आपसे मिलना चाहता है। द्रुपद ने बोला, ऐसे कैसे उसका हिम्मत हुआ कोई गरीब ब्राह्मण ये बोले कि मैं उसका दोस्त हूं, बाहर भगाओ उसको। द्वारपाल ने उसको बोला कि राजा आपको पहचानने से मना कर दिया। द्रोण को यकीन नहीं हुआ, इतना करीब दोस्त था, ऐसे कैसे मना कर देगा। बोला, दोबारा जाओ, प्लीज बोलना कि मैं बहुत गरीबी में हूं, मैं बहुत कुछ नहीं, सिर्फ एक गाय मांगने आई हूं, छोटी सी गाय जिसकी दूध से मैं अपने बच्चे को जिंदा रख सकूं। गिड़गिड़ाने पर द्वारपाल मजबूरन दोबारा गया और द्रुपद बाहर आए गुस्से में, अपने सामने द्वारपाल से बोला कि इसका चोटी खींच करके बाहर लात मार के फेंक दो, ऐसे लोगों को अंदर आने नहीं देना। देवियों सज्जनों, ये एक मित्रता का पक्ष है, वन डायमेंशन ऑफ फ्रेंडशिप। हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं इस तरह के फ्रेंडशिप आती है। एक दूसरे फ्रेंडशिप है, कृष्ण और सुदामा दोनों सांदीपनी के गुरुकुल के छात्र रहे। सुदामा गरीब है, ब्राह्मण है, कृष्ण राजकुमार है। बड़े हुए कृष्ण अपनी द्वारिका में अपना राज्य स्थापित किया, सुदामा गरीब है। वहां भी वही हाल है, पत्नी ने बोला, इतना बड़ा राजा तुम्हारा मित्र है, जाओ कुछ मांगो, नौकरी मांगो, काम मांगो, पैसा मांगो, कुछ तो लेकर के आओ, भूखा कितने दिन तक रहेंगे। सुदामा को वही था कि आपको पता नहीं है ये बड़े लोग जब बड़े हो जाते हैं फिर पहचानते नहीं है, स्कूल कॉलेज में तो ठीक है पर बाद में फिर ये कोई पहचानते नहीं है। हजारों इंसिडेंट है, द्रुपद तो हमने एक बताया, पर पत्नी के बार बार समझाने पर सुदामा आया उसी भाव को लेकर कि पता नहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई ह्यूमिलिएट ना कर दे, कोई मुझे भी कोई लात ना मार दे, इस भाव के साथ दरवाजे पर पहुंच करके द्वारपाल को बोला कि बताओ तुम्हारा मित्र सुदामा आया है, कृष्ण अपनी पत्नी के साथ अपने मित्रों के साथ भाइयों के साथ बैठ के बातें कर रहे थे राजसभा में, वहीं राजसभा से दौड़े दौड़े भागते हैं, सुदामा आया है, उठा करके घर ले जाते हैं, पत्नी और पति दोनों मिलके राज सिंहासन पर अपने मित्र को बैठाते हैं, उसकी पैर धोते हैं। पैर धोना मतलब प्राचीन काल में यह व्यवस्था थी, जो भी गुरुजन है, जो भी आपसे बड़े हैं, वो जब घर आते हैं तो उनके पैर धोते हैं, और उनमें से जो अतिथि है, गेस्ट है, वो भी गुरुजनों के कैटेगरी में आता है ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, घर में अतिथि आया है वो भी ज्ञानी ब्राह्मण है, वो भी मेरा मित्र है। दोनों पति पत्नी उसके पैर धोते हैं, हालचाल पूछते हैं, खाना खिलाते हैं। सुदामा संकोच के मारे में कुछ कह नहीं पाता है कि मेरे लिए कुछ करो, मैं गरीबी में, मैं इसीलिए आया था, पत्नी ने भेजा, कुछ मदद चाहिए, कुछ बोल नहीं पाता है, पता नहीं क्या आंसर होगा। बस अच्छी तरह सत्कार हुआ, बड़ा खुश होकर के, चलो मित्र ने मुझे पहचाना, इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, ये बड़ी बात है, आजकल के जमाने में कौन देता है। देवियों सज्जनों, ये जो आजकल के जमाने वाली डायलॉग है ना, वो हर जमाने में चलता था। जैसे आज को आपको भी लगता है आजकल जमाने में ऐसा होता है, हजार साल पहले भी लोग यही बोलते थे, आजकल के जमाना क्या आ गया है, तब भी बोलते थे, और आपके हजार साल बाद भी यही बोलेंगे कि आजकल की क्या जमाना हुआ। हर जमाने में कुछ अच्छे बुरे होते रहते हैं, पर हमें लगता है हमारे जमाने में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो हर व्यक्ति की ये अपने एज को, अपने अपने समाज को आंकने का यही तरीका है। तो सुदामा को लगा पता नहीं आजकल के जमाना है, कता नहीं क्या बोलूं, कुछ ना बोला, बड़ा प्रसन्न खुश होकर के आया कि प्यार मिला, इतना सम्मान मिला। घर आकर पहुंचा, पैदल तो आना पड़ता है ना, महीनों लग जाता है, तो पत्नी के पास इतने धन संपत्ति का भंडार लग चुका था, नया घर बन रहा था। पत्नी को पूछा सुदामा ने, ये क्या है? पत्नी ने कहा, आप ही ने तो किया सब, आप गए थे तो कृष्ण ने को कहा होगा, कृष्ण ने ये सब भेजा है। देवियों सज्जनों, जो अच्छे लोग होते हैं, निर्मल दिल के लोग होते हैं, उनकी मित्रता में भी सुख होता है। हमारे नीति शास्त्रकार कहते हैं, वरं पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम बनचरे ही सह न मूर्ख जन संपर्कात सुरेंद्र भवनेशु अपि। किसी अच्छे आदमी के पास साथ रहो, जंगल में भी रहो, पर किसी बुरे आदमी के साथ स्वर्ग में भी नहीं रहना। व्यक्ति कितना भी धनी हो, किसी बुरे आदमी के पास मांगने न जाना, कितना भी तुम्हें वो देता हो, करोड़ों भी देता हो, किसी बुरे आदमी से नहीं लेना। और कोई अच्छा आदमी मांगो ना भी दे, तो भी किसी अच्छे आदमी से ही मांगना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर को जो परिवर्तन होता है, जो तुम्हारे मन में जो बदलाव होता है, वो दिखता है। बुरे आदमी की मदद लेना ही तुम्हारे लिए टेंशन पैदा करता है, अच्छा आदमी मना भी कर दे तो बुरा नहीं लगता। तो इसीलिए अच्छे आदमी के साथ मित्रता करना व शत्रुता करना दोनों लाभकारी होते हैं। बुरे आदमी के साथ मित्रता भी हो या शत्रुता हो, दोनों ही खतरनाक होते हैं। इसीलिए ऐसा निर्मल चरित्र वाला व्यक्ति की मित्रता में भी वो चरित्र वो सात्विकता झलकती है। देवियों सज्जनों, कृष्ण इतने महान थे, जैसे मैंने अभी बोला, उनके कंटेम्प्रेरी जितने भी बड़े बड़े लोग थे सब उनको सम्मान करते थे। उसके बावजूद भी जहां उनको जरूरत पड़ती थी, छोटे से छोटे काम करने के लिए कभी कभी संकोच नहीं करते थे। पैर धोने से लेकर झूठा पत्तल उठाने से लेकर किसी का दूत बनने से लेकर अर्जुन का सारथी बनने तक हर काम बड़े खुशी खुशी करते थे। क्योंकि जो योगी होता है, जो उस स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करता है, सुख और दुख में एक जैसा, मान और अपमान में एक जैसा रहता है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए कोई काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। और एक छोटी सी बात कह करके समाप्त करेंगे। हम जो कृष्ण के भक्त, बड़े भक्तिभाव से कृष्ण का, कृष्ण की प्रशंसा और गुणगान करते हुए गा जाते हैं कि कृष्ण कैसे गोपियों के पीछे भागने वाला और कितने सारे स्त्रियों को लेकर चलने वाला, कोई 16,000 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। कृष्ण की रास लीला को इतना प्रमोट किया जाता है जो कि एक इमेजिनरी थ्योरी है, किसी भी किताब में, किसी भी पुराण में, किसी भी कथा में ये राधा नाम का चरित्र संसार में किसी भी किताब में नहीं है। देवियों सज्जनों, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी बुक में नहीं है। ये 14th और 16th century में एक इमेजिनरी कैरेक्टर को लाया गया कृष्ण भक्तों के द्वारा, पता नहीं अपना मन शांत करने के लिए या कृष्ण को बदनाम करने के लिए, ग्लोरिफिकेशन के नाम पर। और कृष्ण खुद महाभारत में अपनी ब्रह्मचर्य का प्रमाण देते हैं। जब अश्वत्थामा कृष्ण के पास आता है कि आप मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दो, एक घंटे के लिए मैं ये लड़ाई खत्म करवा दूंगा, मेरे से अब सहा नहीं जाता, कृष्ण बड़े आश्चर्य होकर देखा, पूछा तुम्हें साहस कैसे हुआ मांगने की सुदर्शन चक्र। मेरा वो अकेला बेटा जिसको मैंने अपनी एकमात्र पत्नी, देवियों सज्जनों ध्यान दीजिए, कृष्ण के मुंह की वाणी है, मेरी एकमात्र पत्नी के शादी कर विवाह करने के, रुक्मिणी के साथ विवाह करने के बाद 12 साल तक ब्रह्मचर्य का दोनों पति पत्नी ने पालन करके, देवियों सज्जनों ध्यान दीजिएगा, जिस संतान को पैदा किया प्रद्युम्न, उसने भी कभी साहस नहीं किया था सुदर्शन चक्र मांगने के लिए, तुमने कैसे मांगा। कृष्ण अपने मुंह से बार बार बोलते हैं, मेरी तारीफ में जो कुछ बोल रहे हो वो मेरे लिए गाली है, मैं ऐसा नहीं हूं देवियों सज्जनों, मैं तो सीधा साधा ब्रह्मचारी हूं, मेरी एक ही पत्नी है, उसके साथ भी मैं बहुत ब्रह्मचर्य पालन के साथ संबंध रखता हूं, मुझे क्यों बदनाम करते रहते हो मेरे भक्त बनके। देवियों सज्जनों, आज के शुभ दिन पर जो कल आप मनाएंगे, उस योगेश्वर जगतगुरु कृष्ण को, जो उसने सारे संसार को शिक्षा दी, सही मायने में सम्मान दें, भक्ति करें, उसको सेलिब्रेट करें, धूमधाम से सेलिब्रेट करें, पर विथ ए पॉजिटिव मैसेज कि तुम्हारे महापुरुष, तुम्हारे भगवान को कलंकित मत करो, उनकी भक्ति के नाम पर उनका यशोगान करो, न कि उनको झूठा कलंक लगा लगा के उनको बदनामी करके बोलो कि मैं उसका भक्त हूं, ये भक्ति है। आज के इस शुभ दिन पर आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी के बहुत बहुत बधाई। उनके 5244वां जन्मदिन पर आप सबको बधाई हो। मैं आशा करता हूं कि आप जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएं, अपने मित्रों को घर में बुला के मनाएं, जैसे बाकी त्योहार आप मनाते हैं, पर एक अच्छे संदेश के साथ कि तुम जिस कृष्ण को मनाते हो, पूजते हो, वो योगेश्वर है, वो ज्ञानी है, वो विद्वान है, वो योद्धा है, वो विचारक है, वो चिंतक है, वो दार्शनिक है, वो योगी है, वो महान है, वो कोई लफंगा नहीं है, वो कोई आवारा नहीं है, किसी गोपियों का कपड़े उठाने वाला नहीं है, ये किसी भी किताब में कोई राधा नाम का कैरेक्टर ही नहीं है कहीं। देवियों सज्जनों, ऐसे कृष्ण को मानो, पूजो, अपने देवता देवताओं का, अपने भगवान के, अपने महापुरुषों का सही मायने में सम्मान करो। इसी के साथ हमारा भी कल्याण होगा, हमारा समाज भी कल्याण होगा। आशा करता हूं हम सब श्री कृष्ण के इसी विचार के साथ ओतप्रोत होंगे और हमें भी हमारा कल्याण होगा। ओम शांति शांति शांति।